वो मैंने थोड़े ना खाए, आपके बच्चे को खाने का मन था। कशिश ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। उसके शातिर दिमाग को देखकर ईशान हैरत में था। उसने बुरी तरह उसे घूरा और तलख लहजे में बोला, ओह तो मेरे बच्चे ने इतने सारे पकौड़े अकेले चट कर लिए। कशिश ने भी तपाक से जवाब दिया, और नहीं तो क्या, आपको नहीं पता आपका बच्चा एक नंबर का चटोरा है और उसकी माँ चटोरी के साथ साथ भूखी भी है। ईशान ने तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए उस पर तंज कसा। कशिश की बड़ी बड़ी आंखें और फैल गईं। आपने मुझे भूखी कहा? हाँ कहा, तो क्या करोगी तुम? ईशान ने बेफिक्री से जवाब दिया। कशिश के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसने नाराजगी से अपने गोल मटोल गालों को फुला लिया। आज से मैं अन्न का एक दाना भी अपने अंदर नहीं डालूंगी। अच्छा, भूखी रह लोगी तुम? ईशान ने लापरवाही से भौंच काते हुए सवाल किया। उसका अंदाज ऐसा था मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। कशिश की जान जली और गुस्सा चेहरे पर उभर आया। हाँ रह लूंगी भूखी, कशिश ने गुस्से में तुनकते हुए जवाब दिया। ईशान कुछ पल गहरी निगाहों से उसे देखता रहा, फिर कुर्सी पर से उठने लगा। ठीक है, तो अब से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ईशान ने लापरवाह अंदाज में अपना फैसला सुनाया और बाथरूम की ओर कदम बढ़ा दिए। कशिश पहले तो फटी आंखों से बेयकीनी से उसे देखती ही रह गई, फिर हैरत से बोल पड़ी, हाँ कितने बुरे हैं आप, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भूखा रखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर ईशान के आगे बढ़ते कदम ठिठके। वो कशिश की ओर पलटा, और मेरी यही प्रेग्नेंट बीवी मुझे कितना परेशान करती है ये नहीं नजर आता तुम्हें? चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे और आवाज में शिकायत थी। कशिश ने अपना निचला होंठ बाहर निकालते हुए मुंह बिचका लिया और मासूम सी सूरत बनाते हुए अपने दोनों कानों को पकड़ लिया। सॉरी, आगे से थोड़ा कम परेशान करूंगी आपको। मतलब परेशान तो करोगी ही, ईशान ने तल्ख लहजे में कहा। कशिश ने अब मुंह लटका लिया और धीमी आवाज में बोली, आपको परेशान नहीं करूंगी तो और किसे करूंगी? ईशान उसका जवाब सुनकर हैरान परेशान सा उसे देखता रहा, फिर अफसोस और निराशा से सर हिला दिया। कशिश यूं ही मुंह लटकाए बैठी रही। कुछ देर बाद ईशान की नर्म आवाज उसके कानों से टकराई, लाओ हाथ तो अपना। कशिश ने आवाज सुनकर झट से सर उठाया। ईशान उसके सामने ही खड़ा था और उसके आगे अपनी हथेली बढ़ाई हुई थी। आप अब भी मुझसे नाराज हैं क्या? कशिश ने मासूमियत बिखेरते हुए सवाल किया और उदास मायूस निगाहों से उसे देखने लगी। उसकी मासूम सी सूरत देखकर ईशान का दिल पिघल गया और उसके लब हल्के से खिंच गए। नहीं, तुम इतनी क्यूट और प्यारी सी इनोसेंट सी हो कि कोई तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता, वो भी तब जब तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए इतनी सारी परेशानियां, मुश्किलें और दर्द सह रही हो। जितना कुछ तुम्हें सहना पड़ रहा है उसके आगे मेरी परेशानियां तो कुछ भी नहीं, और तुम तो कभी एक शिकायत तक नहीं करती मुझसे, फिर मैं तुमसे इतनी छोटी सी बात पर नाराज कैसे हो सकता हूँ? कशिश के लब एक बार फिर दिलकशी से मुस्कुरा उठे, मुरझाया हुआ चेहरा ताजे फूल सा खिल उठा। उसने झट से ईशान की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। ईशान ने उसकी हथेली को कस के थामा, फिर उसे संभाल कर सहारा देते हुए उठाकर पलंग पर बिठा दिया। साइड टेबल पर रखी दवाइयां ली और पानी के साथ दवाइयां उसे पकड़ा दी। कशिश ने बिना किसी आनाकानी और नौटंकी के दवाइयां खा ली। कुछ देर बाद कशिश ईशान के सीने से लगी थी और आंखें मूंद सोले की कोशिश कर रही थी। ईशान उसे अपनी बाहों में भरे किन्हीं ख्यालों में खोया था। उसके चेहरे पर मौजूद गंभीर भाव और माथे पर पड़ी सिलवटें साफ जाहिर कर रही थीं कि वो किसी से परेशान है। कुछ देर तो वो यूं ही अपने ख्यालों में खोया रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, काशी तुम्हारी माँ से बात हुई है? ईशान का अचानक किया गया ये सवाल सुनकर कशिश ने चौंकते हुए उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखा, फिर उसके चेहरे के गंभीर भाव देखकर इनकार में सर हिला दिया। नहीं, पता नहीं, इस बार फोन ही नहीं किया उन्होंने। आखिरी बार तब बात हुई थी जब आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। अब तो 2 महीने हो गए, मेरी भी उनसे बात नहीं हो रही। सोच रहा हूँ खुद से फोन करके हालचाल पूछ लूं कि सब ठीक है या नहीं। कर लीजिए, मुझे भी बहुत चिंता होती है उनकी, मैं तो चाहकर भी फोन कर नहीं सकती, आप ही कर लीजिए, कशिश ने मायूसी से जवाब दिया। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे। इन सालों में बहुत कुछ बदला था, पर कशिश के घर वालों का व्यवहार अब भी नहीं बदला था। श्याम जी ने उसे पूरी तरह से भुला दिया था। उनके लिए हमेशा से उनकी इज्जत और अम्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और उन्होंने अपनी बेटी को छोड़कर अपने गुरूर को चुना था। उन्होंने कशिश को माफ नहीं किया था। उस घर के दरवाजे कशिश के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे, पर जानकी जी ने उससे रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो छुपकर ही फोन करती थी और हर कुछ दिन बाद कशिश की उनसे बात हो जाती थी। ईशान को भी फोन करके बात कर लेती थी। अभिषेक के परिवार ने मायके की कमी तो पूरी की थी, पर कशिश को जानकी जी की याद बहुत आती थी। पर वो उनकी कसम के आगे बेबस, लाचार और मजबूर थीं कि चाहकर भी ना उन्हें फोन कर सकती थीं और ना ही मिल सकती थीं। ईशान सूरत हाल से बखूबी वाकिफ था और कशिश की मायूसी की वजह भी जानता था। उसने बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं करता हूँ उन्हें फोन और तुमसे भी बात करवा दूंगा, अभी तुम उदास या दुखी मत हो, हमारे बच्चे के लिए ये ठीक नहीं। कशिश ने सर हिलाया और वापस उसके सीने से लग गई। ईशान ने प्यार से उसके सर को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मन भटकते हुए उन लम्हों में खो गया जब ये अप्रत्याशित खुशी उनकी जिंदगी में आई थी।